एक छोटी सी और बात याद रखें कि आपकी हर शादी से या तो कोई गलत रस्म टूटी, मसलन अभी हम पढ़ रहे हैं हजरत जैनब की शादी मुंह बोले बेटे की बीवी थी ये टूटी, या इसी तरह से हजरत आयशा से शादी मुंह बोले भाई की बेटी, या तो कोई गलत रस्म टूटी या फिर कोई नई चीज डली। अल्लाह ने या तो कोई कानून दिया या कोई कानून तोड़ा। तो ये सारे हालात हों तो शादी का लुत्फ कहाँ रहता है? आप सोचें जिस बंदे का दिल धक धक कर, अल्लाह खुद गवाहियां दे रहे हैं कुरान में कि नबी आप डर रहे हैं लोगों से कि लोग क्या कहेंगे, क्या उस शादी में लज्जत होगी, मजा होगा। और दूसरी बात एक और नोट कीजिए हजरत जैनब के नाते से कि हजरत जैनब के साथ नऊज़ु बिल्लाह अगर आप इंटरेस्टेड होते फूफीजाद बहन होने के नाते से तो जैद को क्यों कहते हैं आप इनसे निकाह करें? पीछे आप सुन चुके, आप खुद कह के कि आपने निकाह कराया, फिर कुरान की आयत उतरी तो हजरत जैनब को भी मानना पड़ा। अगर दिल में चोर होता नऊज़ु बिल्लाह तो क्या उनको कंवारे पन में लेते या उनको पहले शादी वाला करवा के फिर लेते? जुबान भी नहीं जेब देती ये बातें कहते हुए, अच्छी ही नहीं लगती ये बातें। अल्लाह के नबी को इस तरह के अहकामात दिए गए क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत सारी थी। अब ये जो बात है खालिसत अल्लाह का मिन दूनिल मोमिनीन, हो सकता है कोई मर्द ये कहने लगे कि भाई हमारे लिए ये सारी रुख्सतें क्यों नहीं, हमारा भी दिल चाहता है। तो कहा मोमिनीन, पहले मोमिन बनो। जो मोमिन बनेगा वो ऐसा सोचेगा भी नहीं, मोमिन तो एक ही औरत से गुजारा कर लेता है वो जैसी तैसी भी हो, उसकी ज़िंदगी में फिर दूसरी औरत नहीं आती इल्ला ये कि वो किसी को सहारा देने लगे। तो ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि अगर हम पे भी ये सारी पाबंदियाँ आसान हो तो फिर उनको नंबर एक तहज्जुद पढ़नी पड़ेगी फ़र्ज़न, क्योंकि उम्मत पे तहज्जुद नफिल थी नबी सल्लम पर फ़र्ज़ थी। ये तो कोई नहीं कहता कि अल्लाह के नबी पढ़ सकते थे फ़र्ज़ के तौर पर तो हम क्यों ना पढ़ें। दूसरी बात है कि सदका आम लोगों पे हलाल नहीं है, अल्लाह के नबी पर हलाल नहीं था। तीसरी बात, इस पे तो मेरा ले दिल धक धक करेगा हमारा, और वो क्या कि अल्लाह के नबी की जायदाद तकसीम नहीं हुई, सारी चैरिटी में चली गई। चलिए आप चाहते हैं कि आपको रुख्सतें मिले, आप भी कहिए कि आपके मरते ही आपकी सारी जायदाद जो है वो बट जाएगी नहीं बल्कि वो चैरिटी में जाएगी। फिर आप देखिए कि एक और बात ऐसी आयत के अगले समय आने वाली है लेकिन उसको हम यहीं देख लेते हैं कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने यहाँ तक रुख्सत दे दी थी कि आप अपनी बीवियों के बीच में अदल करें ना करें, बारी रखें ना रखें, जब मौका जैसे हालात हो जिसके पास जाए ना जाए, लेकिन आपने ये रुख्सत कबूल नहीं की। यानी यहाँ तो दो को नहीं खुश रख सकते, अल्लाह के नबी तो नौ को भी खुश रख लेते थे। हजरत सौदा और हजरत खदीजा दो चली गई पहले, उसके बाद आपकी नजौजियत में एक वक्त में सात आठ बीवियाँ भी रहीं। और आप सोचिए हफ्ते के 7 दिनों को डिवाइड करके देखें एक एक बीवी का हक देना कितना मुश्किल है, लेकिन आपने ये रुख्सत नहीं ली। अल्लाह ने कहा कि आपकी मर्जी है, आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने माना। फिर इसके बाद आप देखिए एक और ख़ास बात भी तो है ना कि आपकी वफ़ात के बाद आपकी बीवियाँ दूसरे मर्दों पर हराम हैं, जबकि आम मोमिनों की औरतें उनके मरते ही दूसरी जगह निकाह कर सकती हैं इद्दत से गुजरने के बाद। तो अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ये हमारी मर्जी है, हमने जो भी किया है गलत नहीं किया। क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम, बड़ा मोटा जुमला है, इसको बड़ा बड़ा करके लिख लें, हमें खूब पता है कि हमने क्या फ़र्ज़ किया। ये कौन कह रहा है? अल्लाह की ज़ात। इतराज़ करने वालों को जुरत कैसे मिली? अल्लाह ताला कह रहे हैं बेशक हमें खूब पता है हमने जो फ़र्ज़ किया है मुसलमानों पर उनकी बीवियों के मामले में, वमा मलकत ऐमानुहुम, और उनकी कनीज़ों के बारे में, जो हुक्म जिसको देने थे जिसको जो कहना था ये लाजिम है, हमें पता है हमने ऐसा कर दिया है। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि लिकैला यकून अलैका हरज, ताकि आप पर कोई तंगी ना हो। आप चाहें ना तो यूं बीच में एक ब्रैकेट लगा लें, ये बीच का असल में जुमला जो है ना ये जुमला मोतरजा था। लिकैला यकून अलैका हरज का ताल्लुक जो है ना ये पीछे वाली चीज़ों से है कि जो अल्लाह के नबी को रुख्सतें दी गई, क्यों दी गई? ताकि आप तंगियों से निकल जाएँ। आपकी तंगी क्या है कि आपके ऊपर दीन की जिम्मेदारियाँ, आप एक नबी भी हैं, आप एक हुक्मरान भी हैं, आप मुबल्लिग भी हैं, दाई भी हैं। ऐसे लोग अपने घर वालों के 100% लाड़ चाव नहीं देख सकते। अल्लाह ताला ऐसे पे नहीं पूछेगा लेकिन लोग ज़रूर पूछेंगे। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता आ रहा है जो अगली आयतों को साथ पढ़ के ही हम देखेंगे। चलें पूरा कर लेते हैं तो वाज़ू वहीं पूरा होगा। नबी सल्लम को कहा कि ये रुख्सतें आपको इसलिए दी गई कि तंगी ना हो आप पे, दिल तंग ना हो, जिन औरतों के हक आप नहीं दे पा रहे, आपके लिए जिन औरतों को हलाल किया, कहीं आप उनको गुनाह ना समझें, अल्लाह के इन अहकामात से दिल तंग ना हो। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और मेहरबान है। करें क्या आप, तुरजी मन तशाओ मिन हुन्ना, आपको इख्तियार है दूर कर दें जिनको चाहें अपनी अजवाज में से, तुरजी अलग कर दें दूर कर दें, वतु वी एलई का मन तशा, और अपने पास रखें जिनको चाहें, यानी आपको बिल्कुल चॉइस है, रोज रहें पास रहें अलग रहें, इसे ये नहीं मुराद के आप मिलकर बिल्कुल छोड़ दें, इशारा है बारियां लगाने में, बारी मुकर्रर कर लें चाहे ना करें, निकाह करें ताल्लुक करें कायम ना करें, आप एक बार करें दो बार करें, एक बीवी से आप ख्वाहिश पूरी कर लें दूसरी से ना करें, टोटल चॉइस है। हाँ, वमनिब तगई तमिमन अजल तफला जुनाह अलैका, और अगर आप दोबारा तलब करें जिनको आपने अलहदा कर दिया था तब भी आप पर कोई मुजायका नहीं। क्यों भाई? इसलिए कि जालिका अदना, ये रुख्सत, ये बात, इस रुख्सत से पूरी तवक्को है कि अंतकर्रा आयुनहुन्ना, कि इनकी आंखें ठंडी होंगी, वला यहज़न्ना, और वो अज़ुर्दा खातिर ना होंगी, वयर्दैन बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन्ना, और सब की सब खुश रहेंगी उस पर जिनको अल्लाह ने अता किया। यह अज़वाज मुतहरात की तरफ इशारा है कि अल्लाह के नबी अब इनके बाद किसी और बीवी से शादी नहीं करेंगे, और इनके साथ जो मामला आपका होगा बराबरी का सलूक करेंगे, आम औरतों की भी बात है, तो ये सारा कुछ बीवियों की खुशी का सबब होगा। वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह खूब जानता है कि जो तुम्हारे दिलों में, या वाहिद और जमा के ज़मायर को जहन में रखिएगा, शुरू के ज़मायर जो वाहिद के थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे, जो जमा के है ना कुल्लुहुन्ना, ये तो औरतों पे बात हो गई, मा फी कुलूबिकुम ये आम मुसलमान मर्दों की बात है कि मुसलमान मर्दों तुम्हें क्यों कहा जा रहा है कि बीवियों में इंसाफ करो, उनके लेन देन में ना नफ़े में, ताकि तुम्हारी बीवियां तुमसे खुश रहें, तुम्हारी बीवियों के दिल ना दुखें, और अल्लाह को खूब पता है जो तुम्हारे दिलों में है। मतलब यह है कि कोशिश के बावजूद अगर तुम इंसाफ नहीं कर पाते, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लम अपने बारे में अंदेशा रखते थे, सही मुस्नद अहमद तिर्मिज़ी नसाई और अबू दाऊद की रिवायत है, हज़रत आयशा रावियाँ कि अल्लाह के नबी सल्लम सब अजवाज में बराबरी करते थे और ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हाज़ा क़समी फ़ीमा अम्लिको फ़ला तलुमनी फ़ीमा ला अम्लिको, ए अल्लाह ये मेरी बाँट है जिसमें मेरा इख्तियार है, मैंने बराबरी कर ली, यानी ना नफ़े में शब बाशी में, लेकिन मेरा उस पर इख्तियार नहीं जो मेरे दिल पे है, बस उस पे मुझे मलामत ना फरमाना। हज़रत आयशा की तरफ आपका दिल झुकता था। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अल्लाह के नबी की मोहब्बत क्या थी, कि अगर किसी बीवी की नौबत में उनके यहाँ जाने से कोई उज़र होता तो आप उससे इजाज़त लेते, जब तक कि आयत नाजिल हो चुकी कि तू वी इलई, क्या बराबरी का हक भी आपको माफ़ कर दिया गया। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई रुख्सत मिलती थी, सारे अंबिया की तरह आप रुख्सत वाला मामला ले लेते थे, अजीमत पर अमल करते और रुख्सत को ज़रूरत के तौर पर भी लेते, यानी ये मुख्तलिफ़ दर्जे होते हैं अल्लाह के नबी की बीवियाँ और आपके ये सारे मामला जो हम पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ बातें ना समझ आ रही हों। क्यों ना आ रही हों? क्योंकि ये हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे यहाँ तो जुमला ये होता है कि एक मर्द है और उसके कई औरतों से ताल्लुकात है, तो रहती रहती हैं बीवियाँ, उड़ती बहुत हैं कि ये बाहर की औरतों से ताल्लुक़ रखते हैं, और उस दिन रूठ के माँ बाप के घर चली जाती हैं जब पता चलता है जी अब तो उसने शादी कर ली। कई जाहिल ऐसी हैं कि वो गंदे ताल्लुक़ रखें, मिस्ट्रेसेस रखें, गंदी औरतों से ताल्लुक़ हैं, तो बसती रहती हैं कि अब क्या करें बच्चे हैं, जूँ ही वो दूसरी शादी कर ले कहते हैं अब नहीं रहूँगी। ये हमारा कल्चर ही नहीं, इसलिए हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये बातें ख़ास तौर पर अरबों के कल्चर को सामने रखी और सब कुछ बयान करके फरमा दिया कि वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, वो दिलों के मामले जानता है, उसको खूब अच्छी तरह से पता है कौन क्या करता है। वकानल्लाहु अलीमन हलीमा, अल्लाह ताला इल्म वाला भी है और हिल्म वाला भी है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, ये है वो आयत, आयत तहीर के बाद जो नाजिल हुई कि अब आप पर बिल्कुल हलाल नहीं है। देखिए इतनी हिल्लतें भी अल्लाह की तरफ से हुई, लेकिन एक चीज़ हलाल नहीं है, वो क्या कि मिन बादु, इसके बाद वला अंत बदल बिहिन्न मिन अज़वाजिन, कि ना इसकी इजाज़त है कि आप तब्दील कर लें इन अज़वाज से दूसरी बीवियों को, ولو اعجبك حسنهن، اگرچہ آپ کو پسند آئے ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، بجز ان کنیزوں کے جو آپ کے پاس ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. جب ازواج مطہرات نے آپ کو چن لیا تو کہا اب آپ اس کے بعد نہ تو کسی بیوی کو بدل سکتے ہیں، یعنی طلاق دے کے دوسری کر لیں، اور نہ اس کے بعد کوئی دوسرا نکاح آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے چوائس ہے. یہ ازواج مطہرات کو تحفہ ملا تھا اس بات کا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا تھا، قبول کر لیا تھا. اللہ دل میں ابھرنے والے خیالات، میلانات کا بھی علم رکھتا ہے، وہ انسانی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، وہ پکڑتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ بندے کے اندر بہت کمی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان ساری آیتوں کو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سامنے جو بھی حکمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے ذریعے سے آئیں، اگر آپ ایک سٹریچ میں کر لیں تو 6 درجے مختلف ہمارے سامنے آئے. نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سے زائد نکاح شخصی ضروریات سے آگے بڑھ کر ہیں. یعنی ایک مرد کو اتنی بیویوں کی سچی بات ہے ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے 1 اور 2 بہت ہے. ہاں، جو شادی کے بغیر ہر روز ہر دن اپنا تعلق دوسری عورتوں سے رکھے، ان کو پھر کسی سے بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. جیسے ایک عورت کی کہانی بھی جو سنائی تھی کہ 6 بچوں کی ماں بن چکی ہے اور کہتی ہے ابھی مجھے وہ مرد ہی نہیں ملا جس سے میں شادی کروں. تو یہ گندا ٹیسٹ ہو جائے وہ تو اور بات ہے، لیکن حلال طریقے سے اتنی ذمہ داریوں کو نبھانا ایک مرد کے بس میں نہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے قدرت بھی دوسرے مردوں سے زیادہ دی تھی. عام مرد اتنی بیویوں کے حقوق نہیں پورے کر سکتا. پھر اسی طرح آپ کے نکاح جو تھے یہ تبلیغی اور تعلیمی ضروریات کے لیے تھے، تبلیغ بھی ہوئی اور تعلیم بھی پھیلی. پھر آپ کے نکاح اصلاح معاشرہ کے لیے تھے. آپ اب سارے نکاحوں کو جمع کریں گے تو آپ دیکھیں گے ان میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں آئیں گے. پھر آپ کے نکاح جاہلانہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے تھے. آپ کے نکاح قبائلی عداوتوں اور تعصبات کو ختم کرنے کے لیے تھے، یعنی دشمنیاں ختم ہوئیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک جاہل قوم کو مہذب بنانے کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کی تربیت کی ضرورت تھی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف عمر کی عورتوں کو اللہ کے نبی کے نکاح میں دیا، پھر انہوں نے آپ سے تعلیم اور تربیت پائی اور آپ کے بعد امت کو علم دیا. یہ تو آج ہم بہت کم جانتے ہیں کہ آج جتنا علم پھیلا ہوا ہے نا کتابوں کی صورت میں، ہر عالم کے پیچھے ایک عورت ہے، ہر عالم کے پیچھے ایک عورت ہے. یہ میں آج کے عالموں کی بات نہیں کر رہی، اسلاف. پیچھے سے جا کے دیکھیے جتنی موٹی کتابیں آپ کو عربی کی ملیں گی، ان کے لکھنے لکھانے والے جو تھے وہ کسی نہ کسی عورت کے شاگرد تھے. لیکن چونکہ اس وقت تک سوچ پاک تھی، نظر پاک تھی، تو لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں سوچ لیتے تھے. تو یہاں پہ یہ چیز ہوئی. اور ایک سر راہ جو بہت ہی خوبصورت بات اس میں سمجھ آئی، جس سے کم از کم میں نے اپنے دل کو بہت ہی مضبوط کیا. اللہ کو پتہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں خود بخود اپنے لیے بھی عملی رہنمائیاں ملتی ہیں. یہ جو بات ہم نے اس آیت میں پڑھی، جو میں نے اس وقت نہیں چھیڑی لیکن بات کر دی، کہ یہ جو بات ہے کہ لکئی لا یکون علی کا حرج، اللہ کے نبی کو کچھ پابندیوں سے آزاد کیا گیا تاکہ آپ پہ مشکل نہ آئے. بالکل یہی پیغام مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج ہر اس دین کا کام کرنے والے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کہ جو تعلیمی تدریسی ذمہ داریوں کو اور اپنے گھر کو ساتھ لے کے چلنا پڑ جاتا ہے. کچھ نہ کچھ قربانیاں کمیاں ہوں گی. کسی نے میرے سے ایک بہت عرصہ پہلے کسی دین والی خاتون کے بارے میں بات کی، دیکھو دیکھو کیسی ہے، میاں کہیں ہیں، بچے کہیں اور خود کہیں چلی گئی. کسی کا نام لے کے انہوں نے بڑا دکھ سکھ کیا. اپنی طرف سے تو وہ شاید یہ سوچ کے آئی تھی کہ میرے سے کوئی بات سنیں گی کہ بھئی ہاں دیکھو. کہنے لگی کہ دیکھو یہ کون سا دین ہے کہ میاں کہیں بیٹھا ہوا ہے اور بچے کہیں ہیں اور یہ جا کے دوسرے شہروں میں تبلیغ کر رہی ہیں. تو میں نے بڑے رازدارانہ انداز میں ان سے پوچھا، آپ کو ان کے میاں نے یہ کہا ہے؟ آپ سے ان کے بچوں نے یہ شکوا کیا ہے؟ کہتی نہیں. تو میں کہا آپ کو اتنا درد کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا وہ اس پر شکر کرتے ہوں گے کہ اللہ نے ایسی بیوی دی کہ دین کا یہ کام کر رہی ہے اور بچے خوش ہوں گے کہ ہم ایسی ماں کے بچے ہیں. آپ کو کس کا دکھ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا اپنے ماں سے زیادہ جو ہے وہ دوسرے لاڈ دکھانے لگ جاتے ہیں. تو گھر داریاں متاثر ہوں گی، ہونی ہے. عصمت کا راستہ لاڈ کا راستہ نہیں. ہم صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہیں، ہم آسان راستہ نہیں مانگتے، محفوظ راستہ مانگتے ہیں، کامیابیوں والا راستہ مانگتے ہیں. ہم میں سے کوئی نمازوں میں یہ نہیں کہتا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، بڑا آسان راستہ دے. نہیں، صراط مستقیم پتلا نہیں ہے. کل پھر تیاری کر رہی تھی میں شام کی کلاس کے لیے، تو میں اس میں یہ پڑھ رہی تھی کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے सिरात अरबी में स्वाद रहता है जिसमें एक वक्त में कई ट्रैक होते हैं। ये कल पहली दफ़ा बात मुझे समझ आई। कितनी बीसियों बार सूरह फातिहा पढ़ाई हुई है, लेकिन स्ट्रोमन क्लास की तैयारी में ये नुक्ता मेरे सामने आया कि स्वाद रोता डिक्शनरी में उस रास्ते को कहते हैं जिसके कई चैनल होते हैं। तो एक औरत को कितने चैनल साथ लेके चलने पड़ते हैं? माँ का चैनल, बीवी बनने का चैनल, और बहन होने का चैनल, कोई बहू होने का चैनल, फिर तालीम का चैनल, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का चैनल, कहीं एकेडमिक का चैनल। ये कोई आसान काम है? ये तो अल्लाह बड़े ख़ास लोगों को चुनता है जो वाकई सब काम साथ लेके चले। कहीं ना कहीं कमी तो होगी, होगी, मानते हैं होगी। फिर अल्लाह ऐसे घर वाले भी दे देता है, उनके वसफ़, उनके हौसले भी ऐसे हो जाते हैं। मैं कई ऐसी सिस्टर्स को जानती हूँ कि जब दीनी सिलसिला शुरू करती हैं तो शौहर नाराज़, बच्चे परेशान, दो चार साल बाद अल्लाह उस दीन की वजह से उनको इज़्ज़त भी देता है, मुआशरे में एक मुकाम भी है। फिर वो कहती हैं हमें गाड़ियाँ भी लेने आती हैं, फिर लोग दर्स के टाइम लेते हैं। तो इसी बात पे घर वाले खुश हो रहे होते हैं कि तुम तो माशाल्लाह बड़ी फेमस हुई। एक औरत थी, तो औरत से मेरा लड़की है, मैरिड है, तो उनका नाम उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम के साथ लगाया हुआ है, हालांकि असूलन तो बाप का ही है। अब होता क्या कि जूँ ही उनका नाम हम बोलते हैं तो कहती मेरे हस्बैंड यूँ खिलखिला रहे होते हैं कि मेरा नाम आ रहा है माइक पे, वो उनका नाम है, हम क्या करें। तो उस पर खुशियाँ मना रहे होते हैं कि देखो मेरा नाम भी होगा। वो बाहर बताते होंगे, अच्छा ये तुम्हारी बीवी का नाम लिया इन्होंने, ये तुम्हारी बीवी इनकी कोऑर्डिनेटर बन गई, ये तुम्हारी बीवी इनकी ग्रुप लीडर बन गई। तो दिल में अभी भी खुश होते हैं, लेकिन शुरू में हम ये जो कर नहीं पा रहे होते ना सेटअप, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे जहनों में। स्पेशली आप देखिए कि आप सब इस वक्त 23वें पारे पे पहुंचने वाले हैं। याद है आपको किस कोर्स के आगाज़ में हमने आप लोगों से एक बात की थी? आपको याद नहीं होगा, हमने प्लानिंग की हुई है, मुझे तो पता ही है कि तालीम और तरबियत साथ साथ, अगर आप फ्लायर भी पढ़ के देखेंगे तो उसमें ये थिंक थी कि तालीम और तरबियत साथ साथ, और तालीम आप लेते जा रहे हैं, आगे सारी ज़िंदगी भी लेंगे इंशाल्लाह, वो सिलसिला आपका कभी मुनक़ नहीं होगा। लेकिन अब जो आखिरी 8 पारे हैं इसमें आपके तरबियती सेशन होने हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमली दीन सीखने वाला बना दे। कोई रस्मी दीन नहीं सीखना हमने। अगर दिल में तड़प आ गई है ना इतने पारे पढ़ के कि मैंने कुछ करना है, कारामत बनना है, वम ममायन फन नासिफ यम कुस, तो फिर आप जीत गए, आपका कोर्स हो गया, आप कामयाब हैं, आप फर्स्ट आ गई। क्या आपके दिल में ये तड़प आ गई है कि मैंने अपने इर्द गिर्द की गंदगी दूर करनी है? तो लिहाजा आप सबके लिए प्रोजेक्ट है, आप अपने इर्द गिर्द ढूंढें जगह, कौन बात देखें करें, और छोटी एक बंदे की, दो बंदों की, घर में छोटे छोटे अपने लिए टारगेट्स ढूंढिए कि जिसके ज़रिए फिर आप इस काम को सीखें। आपके मैंने सीखना मेरी मजबूरी है, शौहर को बना लें इसके लिए, अपने लिए वो क्या कहते हैं ट्रायल, कुर्बानी का स्टूडेंट बना लें कि भाई मैंने पढ़ाना है या मैंने पढ़ने में मदद करनी है, ये बैठे सुने तो मैं आपको डिस्कशन कराती हूँ कैसा कराती हूँ, इसी बहाने कुछ उनका भी भला हो जाएगा। चलिए सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।